बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्रिका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं आज का ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इन दिनों हम पहले कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वरदानों का उपयोग। मेरे प्रियो, हम पत्री के उसी भाग में हैं जिसमें पौलुस आत्मिक वरदानों की चर्चा कर रहा है। अध्याय 12 में हमने वरदानों का ईश्वरीय दान देखा था। आत्मिक वरदान कलीसिया की अनेकता में एकता बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। प्रत्येक सदस्य को एक विशेष वरदान प्राप्त है, परंतु सबको एक देह की नाई काम करना है जिसमें विभिन्न अंग अपना अपना काम करते हैं। आंख वह काम नहीं कर सकती जो कान करता है और कान वह काम नहीं कर पाएगा जो आंख करती है। प्रत्येक अंग को अपना ही काम करना होता है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में इससे आगे बढ़ेंगे और वरदानों का उपयोग के विषय में देखेंगे। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ें और अपने अध्ययन में देखेंगे कि हमें पवित्र आत्मा मसीह की देह में एक अंग बनाता है और हमें एक विशेष वरदान के निमित्त वहां रखा गया है। अध्याय 12 के अंत में पौलुस कहता है कि हमें उत्तम वरदानों की धुन में रहना है। जी हाँ, वह एक सर्वोत्तम मार्ग भी सुझाता है, प्रेम का मार्ग। संपूर्ण अध्याय 13 इसी विशेष प्रेम पर आधारित है। अध्याय के अंत में वह कहता है कि सबसे बड़ा प्रेम है और वह आगे कहता है कि हमें प्रेम का अनुसरण ही करना है। मेरे मित्रों, भविष्यवाणी का वरदान अन्य भाषाओं के वरदान से उत्तम है। पौलुस सीधा आगे बढ़ते हुए कहता है कि हमें प्रेम का अनुसरण करना है और आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। आइए हम आज निकालते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसका एक पद। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसका एक पद लिखा हुआ है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। मेरे मित्रों, वचन की उद्घोषणा, स्पष्ट एवं बौद्धिक व्याख्या करना, वह आत्मा प्रदत्त वरदानों और आत्मा के फल में अंतर प्रकट करता है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति आदि, जो आत्मिक वरदानों से अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ अति निष्ठावान विश्वासी मुझसे कहते हैं, मेरे भाई, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको आत्मा का वरदान मिले। मैं उनसे कहता हूं कि मैं उनकी चिंता को सराहता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि वे मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे आत्मा का फल मिले। जी हाँ, मेरी मनोकामना तो यह है कि मैं विश्वासियों और अपने जीवन में आत्मा का फल अधिकाधिक देखूं। मैं प्रेम की बढ़ती देखना चाहता हूं, यही एक आवश्यक बात है और यह पवित्र आत्मा का फल है। केवल परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में फल उत्पन्न कर सकता है। मेरे प्रियो, ध्यान दें, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। पौलुस वास्तव में कुरिन्थ के विश्वासियों को अन्य भाषा बोलने की लालसा से उबारने का यत्न कर रहा था। सच तो यह है कि वह पत्री के इस भाग में उनसे कहता है, शांति रखो मेरे भाइयों, धर्मांत मत बनो या भावनात्मक अंधेपन से बचो। जी हाँ, अभ्यासों को बराबर अनुपात में काम में लो। पिछले अध्याय में वह कहता है कि भाषाएं समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, मुझे चिंता है कि अधिकांश विश्वासी पौलुस की बात नहीं समझ पाते हैं। वह कहता है कि अन्य भाषाएं आप बोलेंगे तो एक दिन निश्चित है कि उनका अंत हो जाएगा। जी हाँ, डॉक्टर एटी रॉबर्टसन ने कहा था, ऐसा प्रतीत होता है कि वरदानों में सबसे पहले अन्य भाषा बोलना समाप्त हुआ है। आरंभिक कलीसियाई फादर क्रिस्तोतम ने तीसरी या चौथी शताब्दी में लिखा था, यह गद्यांश अत्यधिक अस्पष्ट है, परंतु इसके अस्पष्ट होने का कारण है व्यक्त तथ्यों के प्रति हमारा अज्ञान, जो प्रेरित की पत्री के पाठक जानते थे वह आप समाप्त हो गया। जी हाँ, एक बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि यीशु ने कभी अन्य भाषा नहीं बोली। पेंतिकोस्त के दिन के पश्चात कहीं नहीं लिखा है कि प्रेरितों ने अन्य भाषा बोली। यहाँ तक कि पौलुस द्वारा अन्य भाषा बोलने के बारे में कहीं उल्लेख नहीं है, या पौलुस ने अन्य भाषा में प्रचार किया हो। निसंदेह पद 18 से संकेत मिलता है कि पौलुस भी अन्य भाषा बोलता था, क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि वह उनसे अधिक अन्य भाषा बोलने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। मेरे मित्रों, मैं पौलुस की इस बात का अभिप्राय तब तक नहीं समझा था जब तक कि मैंने तुर्किस्तान में उन सातों कलिसियाओं के खंडहर के बारे अपने मित्रों से नहीं सुन लिया। स्पष्ट है कि पौलुस ने वहां प्रचार किया, उसके बाद वह बहुत दूर अंताकिया को गया। मेरे विचार में वह अपने घर तर्शीस से वहां तक चल कर गया था। सैकड़ों मील दूर वह अनेक अविश्वासी समुदाय थे जो अलग अलग भाषा बोलते थे। मैं आश्चर्य करता हूँ कि पौलुस उनसे बात कैसे करता होगा। मेरे मित्रों, उसने वैसे ही प्रचार किया जैसे पेंतिकोस के दिन प्रेरितों ने प्रचार किया था। प्रत्येक श्रोता ने उसके प्रचार को अपनी भाषा में सुना। अति संभव है कि उसने कुरिन्थ के विश्वासियों से कहा होगा, यदि तुम्हें अन्य भाषा बोलना है तो प्रचार क्षेत्र में जाओ और वहां के आदिवासियों की भाषा में प्रचार करो। आज परमेश्वर ने कुछ संस्थाओं को उभारा है, जैसे वीकली बाइबल ट्रांसलेटर्स, जो संसार की सब भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करने में प्रयासरत हैं। मेरे मित्रों, यह सबसे बड़ा अन्य भाषा अभियान है जिसे मैं जानता हूँ। हम सब जानते हैं कि एक बार पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। वह कहता है कि वहां उसने अनुच्चारित शब्द सुने, और मेरे विचार में वे शब्द या भाषाएं अनजान शब्द या भाषाएं नहीं थी। वे ऐसे शब्द थे जिन्हें दोहराने की अनुमति उसे नहीं थी। अन्य भाषा आनंद विभोर करने वाली या भाव विभोर करने वाली रहस्यमय भाषा नहीं है। वह मिला जुला या हर्षानुमाद की भाषा नहीं है। अन्य भाषाएं विदेशी भाषाएं थी। पेंतिकोस्त के दिन प्रेरितों ने विदेशी भाषाएं बोली थी, जिससे कि वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी भाषा में सुसमाचार को सुना। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अध्याय 14 प्रेम के पाठ का विस्तार है, जिसका आरंभ होता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आइए हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जी हाँ, बाइबल में कहीं भी अनजान भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ वास्तव में ऐसा होना था। वह जो अन्य भाषा बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी भाषा कोई नहीं समझता, वह भेद की बातें आत्मा में होकर कहता है। अर्थात यदि उसकी भाषा मनुष्य न समझे तो उसे अनजान भाषा में नहीं बोलना चाहिए, जब तक कि वहां उसका अनुवादक न हो। मेरे प्रियो, हम इस अध्याय में देखेंगे कि पौलुस 3 वरदानों पर बल देता है, अर्थात जोर देता है, भविष्यवाणी, अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बाइबल में अन्य भाषा बोलने वाले का उल्लेख बहुत कम हुआ है? इन 3 अध्यायों को छोड़कर इसका संदर्भ मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 17 पद, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद, 11 पद, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 46 और 19 अध्याय के 6 पद में मात्र हैं। कॉर्नेलियुस और उसके परिवार ने अन्य भाषा बोली थी। इफिसुस में यहूना के शिष्यों ने पौलुस के सुसमाचार प्रचार के पश्चात अन्य भाषा बोली थी। अतः हम देखते हैं कि अन्य भाषा अनुग्रह के वितरण पर बोली गई थी। हर बार अन्य भाषा इसी संबंध में बोली गई थी। मेरे प्रियो, पेंतिकोस के दिन अन्य भाषाएं बोली गई थी क्योंकि संपूर्ण इसराइल ने सुसमाचार सुना था। कॉर्नेलियुस के घर में अन्य भाषा बोले जाने का कारण था कि सुसमाचार अन्य जाति में पहुंचा था। इफिसुस में अन्य भाषा बोली गई थी क्योंकि सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक पहुंचा था। ये तीन घटनाएं हैं। मेरे मित्रों, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, अर्थात वह स्वयं नहीं समझता। जी हाँ, तो आइए अब हम आगे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। ध्यान दीजिए, पौलुस भविष्यवाणी करने पर बल दे रहा है। वह कहता है कि अन्य भाषा बोलो क्योंकि इससे तुम्हें प्रसन्नता होती है, परंतु परमेश्वर का वचन भी बोलो क्योंकि वह मनुष्य के लिए उन्नति उपदेश और शांति की बातें हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 4 पद में आगे लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में अन्य भाषा बोलता है तो वह वरदान स्वार्थपरायण है, जबकि भविष्यवाणी द्वारा कलीसिया की उन्नति होती है। आगे पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। मित्रों ध्यान दीजिए, भविष्यवाणी का अर्थ है परमेश्वर के वचन की उद्घोषणा। महत्वपूर्ण बात तो बाइबल अध्ययन है, न कि अन्य भाषाओं की सभा। जो भविष्यवाणी करता है वह शिक्षक है। अन्य भाषा कोई जब तक न बोले जब तक कि उसका अनुवादक वहां न हो। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। जी हाँ, पौलुस कहता है कि यदि मैं तुमसे आकर बात करूं और तुम मेरी भाषा न समझो तो मेरा आने से क्या लाभ। कहने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा हुआ है, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा, और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। मेरे प्रियो, मैं प्रायः सोचता था कि यदि मैं संगीत वादों के साथ वैसा कर पाऊं जैसा अन्य भाषा बोलने वाले आवाजों के साथ करते हैं तो मैं संगीतकार बन सकता हूं। यद्यपि मैं संगीत नहीं पढ़ सकता और मेरे कान संगीत के नहीं हैं, तो भी मैं बिगुल से आवाज तो निकाल ही सकता हूँ। यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। जी हाँ, पुराने युग में तुरही युद्ध के लिए सैनिकों को सतर्क करती थी। मेरे मित्रों, आज हमें सुस्पष्ट सुसमाचार प्रचार करना है ताकि लोग सुन सकें और समझ सकें। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। मेरे मित्रों, पौलुस के कहने का वास्तविक अर्थ है कि हम इस मस्ती को त्याग बुद्धि की बातें करें यदि आप बुरा ना माने तो। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा हुआ है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। मेरे मित्रों, विश्व में अनेक भाषाएं हैं, तथापि एक सी भाषा न बोलने वालों में विचारों का आदान प्रदान संभव नहीं है। यदि आपकी भाषा समझने वाला कलीसिया में कोई भी नहीं तो कलीसिया उन्नति कैसे करेगी? यही तो महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। क्या इससे कलीसिया की उन्नति होती है? क्या इससे विश्वासियों का विकास होता है? मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि वह दक्षिण भारत के क्षेत्र में गया हुआ था और जब वहां पर वह पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि वह परदेश में आ गया है। कारण उसे भाषा मालूम नहीं थी। जी हाँ, इसी प्रकार यदि हम अपने कलीसिया में कुछ उन्नति पाना चाहते हैं तो हमें भाषा को समझने की आवश्यकता है। हम पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 13 पद में आगे पढ़ते हैं, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अन्य भाषा का अनुवाद आवश्यक है, अन्यथा वह समझ में नहीं आएगी। यदि वक्ता स्वयं अनुवाद न कर पाए तो कलीसिया में अनुवादक का होना आवश्यक है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 14 पद में आगे लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मित्रों ध्यान दीजिए, यह उनके लिए है जो कहते हैं कि वे वैयक्तिक उपासना के लिए अन्य भाषा बोलते हैं। यदि बुद्धि काम न करे तो आपको आत्मिक उत्थान नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि पवित्र आत्मा आप में काम नहीं कर रहा है। यदि आपको लाभ का बोध हो रहा है तो वह मनोवैज्ञानिक है। पौलुस कहता है कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। जी हाँ, दूसरे शब्दों में लाभ की बात कहो कि श्रोता भाई आमीन कहे, अन्यथा किसी को समझ में नहीं आएगा। पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय के 17 से 19 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा के 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। मेरे विचार में पौलुस के कहने का अर्थ है कि प्रचार में उसने दर्जनों अन्य भाषाएं बोली थी, संभवतः 4 या 5 गुना अधिक। किसी काबिले या किसी ऐसे लोगों के बीच में न तो वह उनकी भाषा जानता था और न ही वे पौलुस की भाषा समझते थे, अतः वह उनकी भाषा बोलता था। मेरे मित्रों, वे तो पौलुस की बातें समझते थे परंतु पौलुस स्वयं अपनी बात नहीं समझता था। परंतु कलीसियाओं में जहां वे एक दूसरे की भाषा समझते थे वहां पौलुस सामान्य भाषा बोलता था कि सब लोग उसे समझकर आशीष को प्राप्त करें। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसके 20 पद में साफ साफ लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को झिड़क रहा है। पहले तो उसने उन्हें सांसारिक शिशु कहा था, अब वह कहता है कि वे बच्चों का सा व्यवहार न करें। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 21 पद में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी न सुनेंगे। देखिए, वह कहता है कि समझ में आने वाली भाषा बोली जाए, पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा। पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय उसके 22 पद में आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। मेरे मित्रों, पौलुस के कहने का अर्थ है, प्रचार क्षेत्र में अर्थात अंताकिया में वे अन्य भाषा बोलते थे, अतः पौलुस ने वहां पर अन्य भाषा में प्रचार किया। मेरे प्रियो, अपनी ही भाषा में सुसमाचार सुनकर उन्होंने विश्वास किया। अब यह निश्चय है कि वे इसराइल में हैं तो उनकी भाषा बोली जाए, अर्थात वे दोनों समझ सकें। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी का अर्थ यही है कि वे परमेश्वर के वचन को शिक्षा के रूप में ग्रहण कर सकें। हम आगे देखते हैं वरदानों के संबंध में कलीसिया में व्यवस्था। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? आज संसार में बुद्धिमान, विज्ञानविद और कुलीन मनुष्य पाए जाते हैं। उन्हें तार्किक संदेश सुनना है कि समझ में आ जाए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन समझने के लिए हो, न कि विवाद करने के लिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसके 24 और 25 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। मेरे मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि यदि एक अविश्वासी आराधना में वचन सुने तो उसे पाप का बोध हो और वह मन फिराए ताकि वह परमेश्वर की संतान बन सके। पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय उसके 26 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। मेरे मित्रों, यदि कोई अन्य भाषा बोले तो उसका अनुवाद करना आवश्यक है और संदेश से उन्नति हो। मेरा एक पुराना विद्यार्थी मित्र अन्य भाषाओं की सभा में गया। वह कैथोलिक कलीसिया का सदस्य था। उसने लितानी भाषा में अपनी आराधना विधि पढ़ना आरंभ की। उसके बैठ जाने के बाद एक व्यक्ति खड़ा होकर उसका अनुवाद करने लगा। उसने यहां वहां की अनेक बातें कर डाली। इसके बाद मेरे विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने वह नहीं कहा जो महोदय ने आपको समझाया। मैंने लितानी भाषा में प्रार्थना पढ़ी थी। जब वह उसका अर्थ समझा रहा था, तब सेवकों ने उसे बाहर निकाल दिया और कहा कि वह वहां लौट कर ना आए। मैं उन्हें दोष नहीं देता और न ही सोचता हूं कि मेरे एक मित्र ने जो किया वह उचित था। मेरे कहने का अर्थ मुख्यतः यह है कि अन्य भाषा बोलना उन्नति का कारण नहीं है और कभी कभी यह हमारे लिए धोखे का कारण बन जाता है। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसके 27 से 28 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। मेरे मित्रों, कलीसिया की उन्नति ही नहीं, कलीसिया में व्यवस्था भी बनी रहे। यदि कोई अन्य भाषा बोले तो उसका सही अनुवाद किया जाए और संदेश परमेश्वर के वचन से सुसंगत हो। यदि कुछ और हो तो परमेश्वर का आत्मा उसमें नहीं है। भविष्यत वक्ताओं में से दो या तीन बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। मेरे मित्रों, उस युग के कलीसिया में भविष्यत वक्ता थे जो भविष्यवाणी करते थे। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 9 पद में फिलिप्पुस की पुत्रियां भविष्यवाणियां करती थी। इसी अध्याय में अगाबुस ने पौलुस के लिए भविष्यवाणी की थी। आज भावी कहने का वरदान कलीसिया में नहीं है। यहाँ तक कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियां भी सही नहीं होती है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। मेरे मित्रों, सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन से उद्बोधन सब कर सकते हैं, अर्थात व्याख्या सब दे सकते हैं। मैं गवाहियां सुनकर बहुत आशीषित होता हूं और आप भी आशीषित हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसके 32 और 33 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। मेरे मित्रों, आराधना में व्यवस्था होना अवश्य है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय उसके 34 पद में आगे हम पढ़ते हैं, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यहाँ पौलुस क्या कहना चाहता है? उसके कहने का अर्थ यह नहीं है कि स्त्रियां आराधना में मौन धारण करें। उसके कहने का अर्थ है कि वे अन्य भाषा न बोलें। मेरे मित्रों, यदि आप अन्य भाषा बोलने के अभियान में से स्त्रियों को हटा दें तो वह तुरंत समाप्त हो जाएगा। आप कहेंगे कि यह अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है, परंतु यह सच है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 14 अध्याय उसके 35 और 36 पद में आगे पढ़ते हैं, यदि कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम इससे निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? मेरे प्रियो, निसंदेह उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना था। पहला कुरिन्थियों के पत्र 14 अध्याय उसके 37 और 38 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो। मेरे मित्रों, यह अग्नि परीक्षा है। यदि कोई कहे कि अन्य भाषा बोलने के कारण वह भविष्यद्वक्ता है या एक आत्मिक जन है, तो वह स्वीकार करे कि पौलुस जो कह रहा है वह प्रभु की आज्ञा है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 14 अध्याय उसके 39 और 40 पद में लिखा हुआ है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ एक बार फिर पौलुस हमें कहता है कि हम भविष्यवाणी करने की धुन में रहें। अंततः परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना एक सर्वोत्तम वरदान है। मैं इसके लिए परमेश्वर का आभारी हूँ। सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से करें। जी हाँ, यह एक महान सिद्धांत है। मैं एक बार अन्य भाषा बोलने की सभा में गया और मैं कहता हूँ कि वहां न तो लय थी और न ही बुद्धि संपूर्ण अव्यवस्था थी। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि परमेश्वर की बातें ऐसी न हो। मित्रों, यहाँ पर इस विषय का समापन होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझसे असहमत होकर संबंध नहीं तोड़ेंगे। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और मैं गलत हूँ तो आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और इस वचन के द्वारा मैं और आप सीखेंगे कि सही क्या है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आपकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
के लिए नया गीत गाओ, आकाश और धरती में सात स्वर उठाओ। प्रभु के लिए नया गीत गाओ, आकाश और धरती नया गीत गाओ। और धरती में